Hello and welcome to Days of Our Lives, Mint's audio history series on liberalization and the ordinary man. Here, you will hear stories of how life changed for most people, be it the sunshine boy or the CEO following the reforms of 1991 in their voices.
Previously, you heard Shehzad Ali Khan, a sales representative with retail giant Marks & Spencer, talk about how his life has changed in the past few years. Today, we bring you the story of Mohammed Farooq, a traditional toy maker in Chennapatna town of Karnataka.
ये चनपटना में बहुत सारा काम था, बहुत लोग ये काम कर रहे थे, वो बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, 60% 70% यही काम है। बस सोचे हमारे वालिद ने, चलो ये तो स्कूल पढ़ने से रहा, कुछ इसे एक अच्छा काम लगा देंगे, हुनर कुछ सीखा जाए तो खेलकूद के क्यों है ये बिजनेस, ये काम भी खेलकूद का ही है और बच्चा काम सीख जाएगा करके मेरे को ये खिलौनों के काम में लेकर ये आदमी के पास छोड़ा।
Just about 60 kilometers away from Bangalore city, a green signboard on the Bangalore-Mysore highway reads, "Welcome to the land of toys, Chennapatna." Driving through the highway, small shops display lacquered wooden toys. Just 25 minutes into the drive and we reach Mohammed Farooq's house.
मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मेरी उम्र 40-43 साल है, मैं 48 साल से इस काम में हूँ। 14 साल की उम्र में मैं काम को गया, एक साल ट्रेनिंग किया मैं गवर्नमेंट सेंटर्स में, एक साल की ट्रेनिंग भी दी मेरे को, फिर उसके बाद लोकल फैक्ट्रियों में जाके मैं 2 साल अपना उनके पास काम किया।
फारूक स्टार्टेड ऑफ एज अ लैकर आर्टिजन इन 1987 एंड दैट टाइम ही वाज नॉट द ओनली वन टू टेक अप दिस जॉब। इट वाज अ स्किल मेनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स लर्नड। Farooq tells us about how the industry thrived in 1980s.
बहुत वर्कर्स थे, करीबन 5000 वर्कर्स थे। वर्कर्स 5000 थे। 1000 के ऊपर इस मशीनरी थी, 1000 मशीनरी थी। एक मशीनरी में 10 आदमी 12 ऐसा काम कर रहे थे।
The toy making tradition is believed to have originated in the 18th century when Tipu Sultan was gifted a lacquered wooden toy made in Persia. The Mysore ruler was so impressed that he brought in artisans from Persia to train locals. But from the time it started to the time Farooq joined and later, he says the industry has seen many changes, some very fundamental.
पहले मैं जब काम सीखा छोटे छोटे आइटम्स बनते थे, जो ढेरी जो मैं कर्टन्स लगाते थे, यानी कि स्क्रीन बोलते हैं, वो छोटे छोटे बीड्स आते थे, वो पूरा के वो सजावट के लिए बड़े बड़े घरों में सजावट के लिए लगाते थे और बच्चे सिर्फ हाथ में लेके खेल सके छोटे छोटे टॉयस बनता। एक मैंने इस काम सीखा से 3-4 साल के बाद नैपकिन रिंग चालू हुआ,
नैपकिन रिंग
हाँ जी, और ज्वेलरी, जब ज्वेलरी बाजार में आई नए नए डिजाइन आए, वो प्लास्टिक की यानी कि कोई भी फाइबर की चीज में वो डिजाइन होता तो वो लकड़ी के इसमें बना के वो उसको बाहर एक्सपोर्ट करते थे, वो ज्वेलरी वो सब फॉरिनर्स बहुत पसंद, वो नैपिंग रिंग जब वो बहुत इम्प्रूव हुआ 90 में उसका बहुत डिमांड हुआ, अच्छा बाद एक्सपोर्ट अच्छा पकड़ा, फॉरिनर्स उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो चीज़ मंगा रहे थे।
तो ये कब तक ज्वेलरी नैपकिन रिंग्स इनका कब तक डिमांड चलता रहा, आपको पता चला कि एक्सपोर्ट चल रहा है?
करीबन एक 8-10 साल तक का इसका अच्छा बहुत डिमांड था, मुझे 2000 तक अच्छा चलता, हैंगिंग आइटम चल रहा, जो हैंगिंग लगाते हैं बॉल्स ट्रीज, फॉरिनर्स को वो ट्रीज साल को एक बार जो ईद आती है वो जो झाड़ सार जाते हैं क्रिसमस, उसका आइटम्स तो 6 महीने कंटिन्यू ऑर्डर दे देते हैं, सिक्स मंथ टाइम रहता वो बना के देने के लिए।
इवन दो लैकर टॉयज आर द टाउन्स क्लेम टू फेम, व्हेन फारूक स्टार्टेड द आर्टिजंस वर हार्डली मैन्युफैक्चरिंग एनी टॉयज। The markets around Chennapatna and also in Bangalore city are full of a variety of lacquered toys. But there was a time when there were no push and pull toys and most of the toys available were show pieces.
नई-नई सोच आई, नए-नए आदमी आए, पहले जो थे उनसे हटके दूसरे लोग आए, जो उसमें थोड़ा-थोड़ा नया-नया डिजाइन बनाया, थोड़ा जब खींचने का कुछ खिलौना नहीं, सिर्फ थोड़ा पकड़ के हिलाने का या कुछ देखने का या कुछ समझो शोकेस में रखने की पीस, एक 4 गुड़िया बनाए एक प्लेट पे रखे, एक शोकेस में रख लो, एक चनपटना आइटम है, एक डिस्प्ले के लिए ऐसे घरों में रख ले रहे, खेलने के लिए बिल्कुल कम था, वो सिर्फ देखने के लिए था।
As the country progressed technologically and more work could be done with fewer hands because of machines, lives of several others like Farooq were affected drastically. Adding to that was the same old story of exploitation of laborers by middlemen who took over the entire marketing network.
अभी क्या हाल है इस बिजनेस का के?
नहीं, जब बहुत थे आदमी, अब बिल्कुल कम है। जब 5,000 आदमी थे, अब 1,000 आदमी।
और ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से?
जी, इसमें बहुत रकम के परेशानी रहते हैं। इसमें वर्कर्स को कम सैलरी मिलती है। हमारे पास जो आदमी खरीदता है, बिल्कुल कम को खरीदता है, कम भाव में खरीदता है, वो 2 और 3 दुगनी से वो बेचता है। हमको, हमारे को वर्कर्स को जो है वो उतनी पैसा नहीं मिलता। इस वजह से क्या है, हमारा काम में सिर्फ वर्कर्स डैमेज हो रहा है। वो क्या है, मार्केटिंग के लिए दो बोलते हैं, मार्केटिंग के लिए हमको बहुत खर्चा लगता है, हमको दूसरा खर्चा लगता है करके वो हमारे को जितनी हमारे काम की कीमत है उतनी बिल्कुल नहीं मिले। इस वजह से वर्कर्स को कुली कम्बल लगने की वजह से वो ये काम छोड़ छोड़ के जा रहा है।
कभी ऐसा हुआ, कब कह रहे हैं 2000 तक हुआ?
हाँ जी,
तो कम हुआ तो कैसे पता चला आपको कि क्यों कम हो रहा है?
वो क्या है, वो 8 साल में कम होने लगे। जो क्वांटिटी आती थी हजारों में आती थी, सौ में, अब 5,000 पीस होना, 8,000 पीस होना क्या देती, तो उसकी पीस की डिमांड कम हो गई। 1,000 पीस, 1,500 पीस ऐसा होने लगी। उसकी जो क्वांटिटी थी बिल्कुल कम होने लगी। वो मार्केटिंग बिल्कुल कम होने लगा। इस वजह से एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी होने लगी, आने होने लगी।
Not just technology, the trickling effect of liberalization could be felt in the industry in early 2000 with the inflow of similar looking toys from China and other countries. In 1996-97, India exported toys worth ₹24,503 lakh and imported toys worth ₹5,288 lakh. But by 2006-07, the imports started exceeding the exports so much that the export-import ratio fell from 4.63 in 1996-07 to 0.76 by 2007-08. And in this quiet down, the Chinese toys that had entered the market might have been an imitation of the traditional Chennapatna toys, but those were cheaper and versatile in features. For artisans like Farooq, this sounded like a death knell for the traditional toy industry.
2000-2003 में क्या बहुत तरक्की, अच्छा बिजनेस था, जब अच्छा डिमांड था, वर्कर्स बहुत था, जब हाथ भर के हमारे को पैसा था। चाइना वाले क्या कर दिया, वो कुछ और कई रकम के डिजाइन, कई रकम के माल हमारे इंडिया को भेज दिया। इस वजह से क्या है, हमारे माल की डिमांड बिल्कुल कम हुई। सब हाथ से बनाते हैं चीज, सिंगल सिंगल एक एक पीस बनाते हैं। इधर काम वक्त पकड़ता है, काम पकड़ता है, ये हाथ का काम है। वो चाइना में है मशीनरी का काम, वो तो एक बार को 1,000 पीस बना देती है। वजह से उन्होंने क्या करे, इंडिया का ही बाजार गिरा दिया, उसमें चनपटना भी घाटे में आया।
अब जैसे ये बहुत सारा बिजनेस ऊपर नीचे हुआ है, कभी बीच में कम हुआ, कभी ज्यादा हो गया, आप कैसे रहे इसमें और आपने कैसे अपने आप को बरकरार कैसे रखा ये काम?
कोशिश करता हूँ करने के लिए, लेकिन ये काम से बहुत मोहब्बत है मेरे को, ये काम छोड़ना नहीं पसंद था। क्यों बोलते, ये मैं बचपन में मेरे को साथ दिया होना है, ये मेरे को रोटी दिया है, ये काम छोड़ के क्यों जाऊँ? नहीं, इसमें जितनी भी तकलीफ आए इससे साथ करूंगा और इससे आगे ले जाने की कोशिश करूंगा।
While many decided to move on from the industry or entered the Chinese toy business because of the relatively high profit, Farooq decided to transform his business. He's now an entrepreneur, one of the very few in the town. For someone who started off with a monthly salary of ₹150, he now earns ₹15,000 and also owns 2 small factories.
हाँ जी, मैं खुद का काम कर रहा, मैं कहीं एक जगह काम कर रहा था, उसमें मैं थोड़ा 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 पैसा में जब रख के सेविंग करके मेरे को पिछले वजह से मैं क्या किया, थोड़ी सी ये थोड़ी मशीन, ये एक सिंगल आदमी मैं काम कर रहा हूँ अपने, ये एक मशीन जाके बाजार में खरीद के उससे फर्स्ट छोटा काम चलू।
और उसके बाद अब अभी आप कितने लोगों को अपनी फैक्ट्री में नौकरी देते हैं?
फर्स्ट तो मैं किया, उसके बाद ये एक आदमी को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते आज मैं 10 आदमी को काम कर रहा हूँ।
When Farooq was growing up life was tough. The family made sure to pick the cheapest variety of rice from the market, and fruits like mango or apple were never accessible to Farooq and his siblings. The only asset that the family possessed was a radio. There was no television, no furniture, and no toys for the kids to play. Today, Farooq makes sure his children get to do all that he couldn't as a child.
अच्छा ये बताइए, आप अपने खिलौने आप बनाते हैं, कब से बनाते आ रहे हैं? जब आप छोटे थे और खिलौने बनाते थे तब कभी अपने खिलौनों से खेलते थे?
सिर्फ बनाते थे, खेलते रहते, वक्त नहीं रहता था। सिर्फ 10 बना के कंप्लीट होने के बाद वो बाजार में देना है, पैसा होना था ना। अगर हम खेलेंगे तो क्या खाएंगे, इसलिए लेके दे देते। वो हमारे खिलौनों से दूसरे बच्चे खेलते थे, वो देख के हम खुश होते थे, चलो हम जो बनाए वो बच्चा खेल रहा है, तो हम वो खुशी बहुत बहुत अच्छी खुशी होती थी।
और आपके अपने बच्चे कभी आपके खिलौनों से खेलते हैं?
जी हाँ, पहले फर्स्ट वही खेलेंगे, एक दिन खेल के पूरा देख के, अगर कुछ भी उसमें थोड़ा डिफरेंस है तो मेरे ही बच्चे बोलेंगे, अब ये वो पर्सन जो बना था बहुत अच्छा था, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, देखिए क्या फंड है, वो बच्चे बताएंगे मेरे, अरे हाँ बेटा ये फंड है, बाद में दूसरी जगह लेके देता।
There are only a few families and around 1,000 artisans that are still in the toy making business in this town. But Farooq knows he will continue doing this job for the rest of his life. Podcast produced by Anik Biswas and reported by Ashwaq Masoodi.